ओम शांति। राजयोग शिविर के इस प्रथम सत्र में राजयोग का मूल आधार स्वयं की पहचान, ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट कई सालों से हम सुनते आए, नो थाई सेल्फ रियलाइज थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। व्यक्ति बाह्य रूप से अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके बावजूद भी जब ये कहा जाता है कि अपने आप को जानो, तो और क्या जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जानने से क्या फायदा होगा। अगर नहीं जाना तो क्या नुकसान हो जाएगा। क्यों आत्मा के ज्ञान की जरूरत है हमारे जीवन में। ऐसे कई प्रकार की बातें मन के अंदर उभरती रहती है कि आध्यात्मिकता का महत्व हमारे जीवन में क्या है, उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। देखा जाता तो महाभारत की बात याद आती है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते थे, कई बार भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी का भी सामना किया था, फिर महाभारत के समय वो इतना नर्वस क्यों हो गया, डिप्रेस्ड क्यों हो गया और भगवान से भी विनती करने लगा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। क्या उसको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था? क्या उसको भगवान के साथ पर भरोसा नहीं था? अपनी शक्ति क्षमता पर भी पूर्ण भरोसा था, परमात्मा के साथ पर भी पूर्ण भरोसा था। उसके बावजूद भी उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हिल क्यों गई? और उस समय भगवान ने उसको मोटिवेट करने के लिए कौन सा ज्ञान दिया? सबसे पहला ज्ञान उसको आत्मा का ही ज्ञान दिया। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करते हुए, सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जीवन में कई मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि जिस समय वो भीतर से हिल जाता है, ऐसा नर्वस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसको यही समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और उस समय हम भी कई बार प्रार्थना में भगवान से यही कहने लगते हैं कि हे प्रभु, ये जीवन के संघर्ष में अब हम और संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। और उसके लिए आत्मा का ज्ञान बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। हमारी मनस्थिति को पुनः उमंग उत्साह में लाने के लिए, उस नर्वसनेस से बाहर निकलने के लिए आत्मा का ज्ञान बहुत उपयोगी होता है। कैसे? तो भगवान ने जैसे अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो योग सिखाता हूं जिससे कि तुम राजाओं के राजा बनोगे। राजाओं के राजा अर्थात, और वो योग कौन सा था? योग शब्द सुनते ही कई बार मन के अंदर यही भाव आता, कोई योगासन करने होंगे, एक्सरसाइज करने होंगे। परंतु जब भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन नहीं सिखाए, एक्सरसाइज नहीं सिखाए। इसका मतलब है कि योग का एक और भाव भी है जो एक आध्यात्मिक भाव है, और वही भाव यहां पर लिया गया है। तो योग का सरल अर्थ अगर देखा जाए तो योग माना ही जोड़, जैसे वियोग माना अलग हो जाना, योग अर्थात मिलन होना। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ रहता ही है। जब हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ होता है तो उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। मनुष्य का संबंध मनुष्य के साथ भी होता है, और किसी व्यक्ति के द्वारा समय पर कोई मदद मिल जाती तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है। किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है तो कहेंगे इसके जीवन में दैवी योग चल रहा है। लेकिन राजयोग अर्थात एक सर्वश्रेष्ठ योग आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन ये योग संभव तभी है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। इस जीवन को अगर देखा जाए, ये जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन अर्थात जहां शरीर और आत्मा का संयोग हुआ। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि ये शरीर माना पांच तत्व और इसीलिए जीवन जीने के लिए ये शरीर वही पांच तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। इसी तरह पानी चाहिए क्योंकि इस शरीर के अंदर 60 से 70% पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही भीतर का वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। तो ये पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है। एक भी तत्व कम हो जाए तो इस जीवन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जीवन ही नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार इस जीवन के अंदर जो आत्मशक्ति है उसको भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए। शरीर को पांच तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए? क्या चाहिए? आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? हाँ, आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 बातें चाहिए, 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहते हैं सतो गुणी, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज, जो 7 गुणों का समूह है। और यही आत्मा की वास्तविकता है। वो 7 गुण कौन से जो हर एक को किसी भी जाति, धर्म, भाषा, देश के हो, हर एक को जीवन जीने के लिए चाहिए? सबसे पहला है आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान क्यों चाहिए? आज विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच गया है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे जीवन में क्या होगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है, और इस अहंकार के कारण जीवन में कोई अंतर आया है? संबंधों में कोई अंतर आया है? व्यवहार में अंतर आया है? अहंकार युक्त व्यक्ति का व्यवहार, संबंध, बोल चाल कैसा होता है? और उसी से ही मनुष्य जीवन में दुख, अशांति, टेंशन सब आरंभ होता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? उस अज्ञान को नष्ट करता है, उस ईगो को न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए आपसी संबंधों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे को, जिससे कलह क्लेश कम होते हैं, जिससे संबंधों में सुमधुरता आती है। जीवन की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। यही आज खूंटी कड़ी है जिस कारण मनुष्य जीवन के अंदर इतने कलह, क्लेश, तनाव आदि बढ़ गया है। उसके साथ साथ दूसरा गुण है पवित्रता, शुद्धि। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? कहेंगे बाद में पता चला, ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन अंदर में उसका मन मैला था। हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए धीरे धीरे हम उससे दूर हो गए। तो व्यक्ति को अच्छा कहां लगता है? जहां विचारों की शुद्धि हो, भावनाओं की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, वहां अच्छा लगता है। व्यक्ति के भावनाओं में जब अशुद्धि होती है, व्यवहार में जब अशुद्धि होती है, तो उस व्यक्ति से लोग दूर जाकर के यही कहते हैं, इस व्यक्ति से संभाल के रहना, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। खतरनाक कहा उसको। और उसके बदले कोई व्यक्ति एकदम भोला है, जो अंदर है वही बाहर है, तो क्या कहते हैं? ये भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर होगा, कोई हेरा फेरी नहीं, बहुत पवित्र बंदा है। भावार्थ ये है कि आज इंसान को कहां अच्छा लगता है? हमेशा जहां शुद्धि व्याप्त है। तो ज्ञान से अहंकार नष्ट होता है और आपसी संबंध में सुमधुरता आती है। मन की शुद्धि जहां है, वहां एक दूसरे के समीप हम जाते हैं, और जहां ये दो गुण है वहीं उस संबंध में प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम होगा नहीं। वहां प्रेम नहीं होगा, वहां स्वार्थ होगा। तभी इंसान एक दूसरे से भी आज डरने लगा है कि ये व्यक्ति अगर प्रेम से बात भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कहीं कोई स्वार्थ तो नहीं उसका? इसलिए टेंशन होने लगता है। और जहां ये तीनों गुण है, ज्ञान, पवित्रता और प्रेम, वहीं जीवन में शांति है। इसलिए शांति चाहिए हर एक को, लेकिन शांति का आधार क्या है? ज्ञान, पवित्रता और प्रेम। और जहां ये चारों चीज है, चारों गुण है, वहीं जीवन में सच्चा सुख है। आज हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन वो सुख भौतिक चीज वस्तुओं में नहीं मिलेगा। तभी तो कहा जाता कि व्यक्ति पैसे से साधन खरीद सकता है लेकिन सुख नहीं, पलंग खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। भावार्थ ये है कि सच्चा सुख अनुभव करने के लिए ज्ञान, पवित्रता, प्रेम और शांति चाहिए। और जहां ये पांचों है, वहीं जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है, खुशी है। आज व्यक्ति के जीवन में खुशी ही नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद का अनुभव करने के लिए उसको लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, खुशी चाहता है, बगीचे में जाकर हंसना पड़ता है। और फिर आया वही का वही। और जहां ये छह है, वहीं आत्मशक्ति का अनुभव होता है, अर्थात विल पावर। आज विल पावर तो छोड़ो, व्यक्ति के जीवन में कॉन्फिडेंस भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये छह गुण नहीं है खाली, ये छह शक्ति है। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब शक्ति है। और जब ये शक्ति आ जाती, तब आत्मशक्ति का विकास होने लगता है। दूसरे शब्द में कहो तो ये सात गुण यही आत्मा का स्वधर्म है। हर चीज का अपना गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबालो, रख दो, फिर से अपने गुण धर्म में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा का गुण धर्म है ये सात, और यही सात गुण धर्म में जब आत्मा स्थित है उसको कहते आत्मस्थिति, जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म के आधार पर भी तुम युद्ध करो। यानी ये जीवन जो संघर्ष है, इस संघर्ष में विजयी होने के लिए जहां इतनी आत्म संपत्ति स्वधर्म हो वहां हार हो ही नहीं सकती है, वहां हमेशा विजयी तुम्हारा स्वागत कर रही है। तो इसलिए ये सात ये हमारे गुण धर्म है, ये आत्मा की वास्तविकता है, यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के समय में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब इसको चार्ज कैसे करें? भौतिक साधनों से ये चार्ज नहीं होती है, चीज वस्तुओं से ये चार्ज नहीं होती है। मुझे याद आता है कि कई बार मनुष्य कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि ये बैटरी चार्ज हमारी हो जाए। विभिन्न तरीके अपनाते हैं। कौन से तरीके अपनाते हैं? सबसे पहला तरीका अपनाता है मनुष्य संबंधों में अपेक्षा। ये व्यक्ति द्वारा मुझे शांति मिले, ये व्यक्ति द्वारा मुझे सुख मिले, ये व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करे, व्यक्तियों से अपेक्षा रखते हैं। लेकिन मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है और मैं दूसरे से अपेक्षा रखती हूं, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। आज के युग में वो हमसे अपेक्षा करते हैं। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे करें? इसलिए संबंधों में कलह क्लेश है। लोग यही कहते हैं, हमने और कुछ थोड़ी मांगा, प्यार से बात तो कर सकते हैं ना, लेकिन प्यार है ही नहीं तो बात कैसे करेंगे प्यार से? उसकी बैटरी ही डिस्चार्ज है तो प्यार से बात कैसे कर सकते हैं? और संसार का यह अनादि नियम है, जो देंगे वही मिलेगा। आप किसी से शांति से बात करो तो वो भी शांति से बात करेगा, आप किसी को प्यार दो तो वो भी प्यार देगा, आप किसी को सहयोग दो वो भी सहयोग देगा, आप किसी को सम्मान दो वो भी सम्मान देगा। क्यों नहीं देगा? जो देंगे वही मिलेगा। मुझे याद आता है कि एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी जिसके दो बच्चे थे, एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। दोनों बच्चे खिलौने से खेल रहे थे। अचानक दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। वो कहता है मुझे चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए। छीना झपटी होने लगी। अब चालू ट्रेन है, दूसरा खिलौना है नहीं, तो मां ने उस बड़े बच्चे को, 5 साल वाले को कहा, बेटा इसको दे दे। तो 5 साल वाला बच्चा सवाल पूछता है, यही बात उसको क्यों नहीं कही गई, मुझे क्यों कही गई? ये भी तो मुझे दे सकता है। क्या कहेंगे? आप उसकी जगह पर होते थे तो क्या कहते थे? हाँ, तू बड़ा है। उस माँ ने भी यही कहा, बेटा तू बड़ा है, ये छोटा है। वो 5 साल वाला बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, उसने अपनी माँ से कहा, लेकिन मैं तो हमेशा ही इससे बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला है ही नहीं, है ना? ये तो कभी मेरे से बड़ा होगा ही नहीं। भावार्थ उसका ये था कि क्या हर बार मुझे ही देना होगा। कितना इंटेलिजेंट सवाल पूछा कि हर बार क्या मुझे ही देना होगा। अब क्या कहेंगे, हां कहे या ना कहे? हां कहना चाहिए ना कहना चाहिए कि हर बार उसको ही त्याग करना पड़ेगा, उसको ही देना पड़ेगा? ना कहो तो वो कहेगा अभी इसको ही कहो कि वो मेरे को दे दे। क्या कहना चाहिए? वो मां भी हैरान में पड़ गई कि इसको क्या जवाब दूं। आखिर वो मुझे कहती है, आजकल के बच्चे कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देते हैं ना कि क्या जवाब दे, यही हमको समझ में नहीं आता है। तो मैंने उस बड़े बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, हमें भी ट्रेन में टाइम पास करना था। तो हमने उस बड़े बच्चे को बुला करके पूछा, मैंने कहा ये खिलौना तेरे को चाहिए? कहाँ चाहिए। मैंने कहा देख, अभी तेरा भाई तुझे खुद आकर के देगा 2 मिनट के अंदर। तो मुझे कहता है नहीं देगा, उसको ज्यादा मालूम था, है ना? वो मुझे कहता है नहीं देगा। मैंने कहा और दे दिया तो उसको चैलेंजिंग लगा। तब तक मैंने कहा हम एक खेल करते हैं, अब ट्रेन में और खिलौना तो है नहीं, क्या खेल करेंगे? तो मैंने ऐसे हाथ घिस करके उसको कहा तुम मुझे ऐसे स्पर्श करो और जहां तुमने मिस किया वहां हम तुम्हें करेंगे। कहा ठीक है। अब हम खेलने लगे, वो खेल रहा है मेरे साथ, लेकिन उसका ध्यान उसके तरफ है कि वो मुझे खिलौना देता है कि नहीं देता है, और वो छोटा खिलौना पकड़ के बैठा है, खेल नहीं रहा है, उसका ध्यान यहां है कि ये क्या कर रहे हैं। आखिर उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो खिलौने को छोड़ करके कहने लगा अब मेरे साथ भी तो करो। मैंने उस बड़े को इशारा किया तुम ले लो अभी। 1 साल के बाद फिर से वो बहन से मुलाकात हो गई। मैंने स्वाभाविक रीति से उसको पूछा आपके बच्चे कैसे हैं? कहा अरे उस दिन के बाद उस बड़े बच्चे ने एक ऐसा लेसन सीख लिया जीवन भर के लिए। क्या लेसन सीखा? कि जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा। इसलिए कभी भी कोई भी चीज को लेकर जब झगड़ा होता है, खींचातानी होती है, वो क्या करता है, दे देता है, और फिर जाकर के कुछ ऐसा निकालेगा, खिलौने ऐसे निकालेंगे कि वो छोटा उस चीज को वहीं छोड़ करके आके वहां बैठ जाएगा। कहा लड़ाई झगड़ा ही बंद हो गया, और उसको वहां लगा करके वो अपनी चीज को लेकर भाग जाता है। तो जीवन का ये अनादि सिद्धांत है कि जो मुझे चाहिए वही मुझे देना होगा। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे सम्मान देना होगा, मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्यार देना होगा। मांगने से नहीं मिलेगा, जितना देते जाओ उतना बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, जो देते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो ये 7 गुणों की जो बैटरी है, जो डिस्चार्ज हो गई है, उसको बढ़ाने की विधि है उसको बांटो। संबंधों में अपेक्षा रख करके मांगने से नहीं मिलेगा, और इसलिए जब मनुष्य को नहीं मिला, बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगा, तो दूसरा तरीका अपनाया। कौन सा? कर्म करो। इसलिए मनुष्य ने विभिन्न कर्म किए। कौन से कर्म किए? कई सोचते हैं धन कमाए। धन क्यों कमाना होता है? किसी से भी पूछो भाई धन क्यों चाहिए, तो कहते धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए। तो चाहना है सुख शांति, इसलिए धन कमाते हैं, है ना? करोड़पति से पूछ लो सुख शांति आ गई, क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसलिए धन आ गया लेकिन सुख शांति नहीं आई। कई समाज सेवा करते हैं, पूछो समाज सेवा क्यों करते हो तो कहते हैं आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला तो क्या कहेंगे, अरे इतना पॉलिटिक्स है आनंद कहां। समाज सेवा में भी पॉलिटिक्स है तो आनंद कहां है। कई लोग शादियों पर जाते हैं, पार्टीज में जाते, पूछो ये शादियों पर क्यों जाते हो, पार्टीज में क्यों जाते हो, कहते भाई समाज में रहना है तो सबके साथ हमारा प्यार भरा संबंध बना रहे इसके लिए। पूछो बना तो क्या कहते, एक को खुश किया तो दो नाराज हो गए, बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। कहीं गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं, कहते आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि हो गई, ऐसे ही आत्मशुद्धि हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए, उनको जेल में बंदी क्यों रखे। इतनी सहज विधि अगर है आत्मशुद्धि की फिर तो कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं जीवन में। कई लोग सत्संग करने जाते हैं, पूछो ये सत्संग सुनने क्यों जाते हो तो कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। अच्छा ज्ञान आया, सत्संग सुनने के बाद एक दूसरे के साथ घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए वो ज्ञान भी नहीं आता है। तभी तो कई बार कई बच्चे पूछते हैं अपने माँ बाप से, आप सत्संग में क्या सुन के आए, यही सुन के आए क्या। अगर इतना भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं आया तो सत्संग क्या किया आपने। तो जीवन में विभिन्न कर्म किए आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए, लेकिन बैटरी चार्ज हुई नहीं और ही डिस्चार्ज होती गई और इसलिए फ्रस्ट्रेशन जीवन में बढ़ता है, बेचैनी जीवन में बढ़ती है। तब तीसरा तरीका अपनाते हैं, भगवान को याद करो, उसको याद करने से मिलेगा, वही स्रोत है इसलिए उनको याद करने से प्राप्त हो जाए। इसलिए प्रार्थना करते, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हे प्रभु अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, हे प्रभु मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे तू साफ कर दे। ये सात गुणों की ही मांगनी हम भगवान से करते हैं विभिन्न प्रार्थनाओं में, उसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। ये सात गुण मांग रहे हैं हम, लेकिन रोज मांगने से प्रार्थना करने से मिल गया, स्रोत वही है वहीं से प्राप्त होगा, लेकिन मांगना ये कोई तरीका नहीं है, इसलिए प्राप्त नहीं होता है। उससे प्राप्त करने की भी एक विधि है और जब तक उस विधि को ना अपनाया जाए तब तक आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती। और इसलिए जब भगवान से मांगने पर भी नहीं मिलता तो कितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। तब इंसान चौथा तरीका अपनाता है, कौन सा, इससे तो मर जाना अच्छा है इसलिए आपघात करना चाहता है। आपघात करने वाले से अगर पूछा जाए भाई तू आपघात करना क्यों चाहते हो तो क्या कहते हैं, अरे बहुत टेंशन हो गया है, शांति नहीं, ये कोई जीवन है, इसे तो मर जाना अच्छा है। या कहेंगे बहुत दुख है, सुख ही नहीं, इसे तो मर जाना अच्छा है। एक बार एक ह्यूमन बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, उसको पकड़ लिया गया, उसको पूछा गया तू भाई मरना क्यों चाहते थे, इतने लोगों को मारना क्यों चाहते थे, पता है उसने क्या कहा, बचपन से लेकर अब तक किसी ने मेरे से प्यार से बात तक नहीं किया, हमेशा ठोकरें ही मिलती रही, क्या ये जीवन है, इसे तो मर जाना अच्छा है। लेकिन आपघात करने से क्या आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, क्या यही सही तरीका है, नहीं, और ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। तो क्या करें? तब मनुष्य ने पांचवा तरीका अपनाया, कौन सा? दूसरों को मारो। इसलिए आज इतना आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, दूसरों को मारो। वो सोचते हैं यही दुख अशांति की जड़ है, इसको खत्म करो, उसको खत्म करो, उसको खत्म करो। लेकिन दूसरों को मारने से क्या हमारी बैटरी चार्ज होगी? नहीं। ये भी कोई सही विधि नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? वास्तव में ये सात गुण भी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा कनेक्शन है। आज शांति ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि ज्ञान से हमारी नर्वस सिस्टम ठीक रहती है, वही मैसेजेस पास करती है, इसीलिए ज्ञान चाहिए। शांति इसलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहती है। आज व्यक्ति जब शांति में रिलैक्स होकर के बैठा हो तब उसकी श्वासों की गति कैसे चलती है? नॉर्मल। लेकिन जब टेंशन में होता है तब श्वासों की गति भी एबनॉर्मल चलती है। इसलिए लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से अपनी श्वासों की गति को ठीक कर। लेकिन प्राणायाम का भी पहला नियम यही है कि अपने मन को रिलैक्स करो, शांत करो। टेंशन में प्राणायाम नहीं होते। इसी तरह सुख किस लिए चाहिए? क्योंकि सुख से हमारी पेट की सिस्टम ठीक रहती है। आज व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय उसको कोई दुखद समाचार मिल जाए तो एक भी चीज खा सकेगा? नहीं। 36 प्रकार के भोजन रखे हो, पहली अरुचि खाने से हो जाएगी उसकी, वो समाचार सुनते ही। और अगर मान लो कि उसने खा भी लिया उस टेंशन वाली स्थिति में, तो क्या होगा? वो हजम नहीं होगा, कहीं अल्सर हो गया, कहीं एसिडिटी बढ़ गई, कहीं गैस हो गया, उसको वो हजम नहीं होता है। इसीलिए तो व्यक्ति जब खाना खाने बैठे हो और कोई कलह भी कर रहा हो तो भी क्या कहते? अरे भाई सुख से खाने तो दो। सुख से अगर दो रोटी भी खाई इंसान ने तो भी उसके पेट की सिस्टम ठीक रहेगी। कलह, टेंशन, दुख, उसमें अगर व्यक्ति ने खाना खाया तो उसकी पेट की सिस्टम भी गड़बड़ाने लगती है। इसीलिए सुख चाहिए। इसी तरह प्रेम का संबंध है हमारे हार्ट के साथ। आज दुनिया में इतने हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि प्रेम के बदले स्वार्थ आ गया है। और जहां व्यक्ति का एक प्यार भरा संबंध है, विश्वास है, और वहीं से उसको धोखा मिलता है तो पहला दर्द कहां होगा? सिर में या पेट में? छाती में दर्द हो गया। और इसलिए ये हार्ट की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत के अंदर तो नंबर वन पर जा रहा है। क्योंकि जहां इतना प्यार भरा संबंध और व्यवहार होता था वहीं आज स्वार्थ और बेईमानी आ गई है, विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसलिए परिवार टूटते जा रहे हैं, संबंध टूटते जा रहे हैं और उसमें व्यक्ति के हार्ट पर उसका असर आने लगता है। इसी प्रकार पवित्रता का संबंध हमारी पंच इंद्रियों के साथ है। आज यही पंच इंद्रियों में आसक्ति आ गई है। कहीं देखने की आसक्ति बहुत ज्यादा है, टीवी बार बार देखते रहेंगे तो क्या होगा? आंखें खराब होंगी। कहीं जोर जोर से म्यूजिक सुनने की आदत है, कान में लगा लगा करके सुनते, उसके कान खराब होने लगते हैं। कहीं खाने की आसक्ति है, तो पेट की सिस्टम आदि सब खराब होने लगा। तो जहां ये पंच इंद्रियों के अंदर अशुद्धि आ गई, आसक्ति आ गई, तो आसक्ति माना ही बीमारी भी आ सकती है, है ना? तो इसीलिए हमारा शरीर आज बीमार होने लगा है। नहीं तो कहां कंचन काया थी, लेकिन ये शरीर आज कितना रोगों से भरता जा रहा है। इसी तरह शक्ति का संबंध है हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ। आज यही मस्कुलर सिस्टम व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता रहे, लेकिन समय पर किसी ने उसका विल पावर तोड़ दिया तो छोटे से छोटी परिस्थिति को फेस करने की उसमें ताकत नहीं रहेगी। और व्यक्ति का समय पर जब विल पावर जाग जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। बड़ी बात को फेस करना भी उसके लिए सहज हो जाता है। और आनंद का संबंध है हमारी हार्मोनल सिस्टम के साथ। आज व्यक्ति के हार्मोन्स डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि आनंद की कमी है, खुशी नहीं है जीवन में, इसीलिए। और इसलिए जहां से हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए वहां से तकलीफ आरंभ हुई। तो ये सातों गुण का संबंध हमारे शरीर में अनेक अलग अलग अंगों के साथ है, और इसलिए शरीर स्वस्थ अगर रखना है तो ये बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। देवताओं के लिए हमेशा हम कहते हैं देवताओं की कंचन काया निरोगी काया थी। क्यों? क्योंकि उनकी बैटरी फुल चार्ज थी, इसलिए। और आज का मनुष्य छोटी उम्र से ही कोई ना कोई रोग आरंभ हो जाता है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है, तो क्या करेंगे? नहीं तो कोई कथा में हमने कभी सुना नहीं कि फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ, कोई कथा में सुना नहीं? कंचन काया निरोगी काया, क्योंकि सातों गुणों से उनकी बैटरी फुल चार्ज थी। आज यही प्रयोग मेडिटेशन में किया जाता है अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी, और देखा गया कि कई प्रकार की बीमारियों के ऊपर भी व्यक्ति जीत प्राप्त करने लगा है। लेकिन ये बैटरी चार्ज कैसे करे, उसका तरीका क्या है? तो जैसे शरीर को जो पांच तत्व चाहिए उसके लिए शरीर के पास भी पंच इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से वो उसकी पूर्ति करता है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। इसी प्रकार जो आत्मा को सात गुण चाहिए उसके लिए आत्मा के पास भी इन बिल्ट सिस्टम है। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है? आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम है। जितने भी विचार चलते हैं मन के अंदर चलते हैं, वो विचार फिर बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि उन विचारों को एनालाइज करती है, समझने का प्रयत्न करती है। इसीलिए कहावत है सोच समझ के करना, यानी एक है सोचना, दूसरा है समझना। सोचने का काम मन करता है तो समझने का काम बुद्धि करती है। और उसके बाद कर्म करते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। ये तीनों शक्तियां आत्मा के साथ आती है और आत्मा के साथ ही चली जाती है। मन क्या चीज है? जितने भी विचार उत्पन्न हुए मन के लिए कई प्रकार की उपमाएं दे दी है। कोई कहता है मन तूफानी घोड़ा है, कोई कहता है बंदर जैसा है, कोई कहता है चंचल है। लेकिन इंसान का मन बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल क्षमता है आत्मा की। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि मनुष्य का मन कम से कम गति से भी सोचे तो भी एक मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं। अब सोचने की बात है कि एक मिनट में 25 से 30 विचार आते हो तो 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? असंख्य। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको अलग किया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर चार प्रकार के विचार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, जिसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं, कोई बुरी भावना नहीं। मूल्यों के आधार पर जो विचार है उसको कहते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव विचार, जो कोई न कोई बुराइयों को लेकर के हैं, कोई न कोई कमजोरी को लेकर के हैं, कोई न कोई विकारों को लेकर के हैं, स्वार्थ को लेकर के हैं, हीनता की भावना को लेकर के। ये सारे विचार नेगेटिव विचार है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, कर्म से संबंधित विचार। आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, ये कराना है, ये कर्म से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार, व्यर्थ विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को चबाता रहते हैं। ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब तो हो गया ना, वो अब नहीं सोच सकता है और बीती हुई बातों को चबाता रहता है, अंदर में चलाता रहता है ना। दो दिन तक, कितने दिनों तक वो बातों को अंदर में चबाता रहता है और उसके कारण दुखी भी होता रहता है। तो ये चार प्रकार के विचार एक दिन में आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, आवश्यक और व्यर्थ। अब अगर हम अपने आप को देखें कि जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में अधिकतर विचार कौन से होते हैं? चारों में से कौन से होते हैं? हाँ, व्यर्थ विचार होते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव होते हैं, है ना। पॉजिटिव विचार ना के बराबर है ना। मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी बिजनेस हो जाता है। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो दो नारियल चढ़ा देंगे, बिजनेस हो गया ना। ये काम का भाव दो नारियल है, अगर भगवान ने कर दिया तो उसको मिल गया और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। कैसी मनुष्य की मनोवृत्ति हो गई भगवान के साथ भी। और भगवान के साथ जब ऐसी मनोवृत्ति है तो इंसानों के साथ तो क्या होगी, है ना। और इसलिए आज मनुष्य जीवन के अंदर अनेकों के साथ हमारे संबंधों में एक कटुता आने लगी है। एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था लकड़े का व्यापारी। दोनों में बहुत दोस्ती थी और इतनी दोस्ती थी दोनों की कि जैसे साथ उठना बैठना खाना पीना सब साथ चलता था। एक दिन वो लकड़े का व्यापारी अपने लकड़े के गोदाम में चला गया और लकड़े का स्टॉक देखने लगा। देखते देखते चंदन के लकड़े के पास आया तो देखा बहुत सारा लकड़ा पड़ा है। तो वो हिसाब लगाने लगा कि मेरे कितने पैसे इसमें जमा है। अब हिसाब लगाते लगाते अब इतने लकड़े खत्म कैसे होंगे, कैसे इसको बेचेंगे, कौन लेगा इतने लकड़े को, और ये पैसे मेरे कब छूटे होंगे, विचार चलने लगा। इंसान का दिमाग है, चलेगा तो सही। तो जरूर है सबसे पहला क्या विचार आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, तो उसके मन में विचार आया कि इतना लकड़ा ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन अगर राजा मरा ना तो उसको तो चंदन के लकड़े में ही जलाया जाएगा, तो तब ये सारे लकड़े खत्म होंगे। लेकिन फिर मन के अंदर विचार आया कि राजा तो अभी जवान है, इतना जल्दी तो मरने वाला है नहीं। फिर मन के अंदर विचार आया कि हाँ, कोई अगर उसके ऊपर चढ़ाई करे तो ये मर सकता है। लेकिन फिर मन ने कहा कि चढ़ाई भी कौन करेगा, क्योंकि आसपास के सभी राज्यों वालों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है, अच्छे संबंध है। फिर मन और सोचता है, देखो कितना आगे बढ़ता है, फिर सोचता है कि कोई अगर उसको खत्म कर दे, मार डाले, तब तो राजा मर सकता है। लेकिन फिर उसका दूसरा मन कहता है उसको खत्म भी कौन करेगा, क्योंकि सारी प्रजा भी उससे बहुत खुश है, सुखी है, तो कोई प्रजा भी उससे विरोध नहीं करेंगे। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर मार सकता है तो एक ही व्यक्ति मार सकता है, मैं ही मार सकता हूं, क्योंकि मैं जब जाता हूं तो लोग सभी जानते हैं कि मैं तो उसका दोस्त हूं, तो मेरी कभी चेकिंग नहीं होती है, मेरे को खुली परमिशन है, कभी भी आऊं कभी भी जाऊं। अगर मैंने इसको खत्म किया तब तो राजा मरेगा, और मरेगा तो मेरे सारे चंदन के लकड़े उसको जलाने में काम आ जाएंगे, और उसका पैसा सारा मुझे मिल जाएगा राज्य कोष से। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी राजा को मारने की, इसलिए ये नेगेटिव विचार चलता रहा चलता रहा। काफी परेशान होने लगा, रात रात उसको नींद नहीं आती थी। अब विचारों की शक्ति ऐसी है कि जैसा हम सोचेंगे वैसे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं दूसरे को भी, है ना? तो उसके विचारों के वाइब्रेशन राजा तक पहुंचते हैं, और राजा सोचते हैं कि ये मेरा मित्र जो है इतना पैसे वाला है, लेकिन किसके लिए कमाता है, उसका कोई वारिस तो है नहीं, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये कमाता किसके लिए। तब राजा के मन में विचार आता है, अगर ये जो मर जाए ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाए। अब जहां इतना प्यार था, लेकिन अब एक दूसरे के जब सामने आते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं, वो सोचता है ये कैसे मरे, वो सोचता है ये कैसे मरे, वो प्यार समाप्त होने लगा। बात बात में, छोटी छोटी बात में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। उसके साथ ही जब एक दूसरे को इसी भाव से देखने लगे, अब वो व्यापारी के अंदर भी राजा को मारने की हिम्मत नहीं थी, दोनों की रात की नींद खत्म हो गई, रात रात यही विचार सताने लगे अंदर ही अंदर। आखिर वो व्यापारी से रहा नहीं गया, वो गया राजा के पास और उसने राजा से कहा कि मैं एक माफी मांगने आया हूं। राजा ने कहा, ऐसा तुमने क्या किया जो माफी चाहिए? कहा, किया नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुछ दिनों से एक बुरा विचार चल रहा है, जिस विचार को लेकर के मैं बहुत परेशान हो गया हूं, इस विचार से मैं मुक्ति चाहता हूं, और मेरे मन के अंदर ये विचार अब इतना सताने लगा है। और उसने सारी बात मन की सुनाई और फिर राजा से कहा, इस कुविचार के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब आप मुझे कोई विधि बताओ कि मैं ये चंदन के लकड़े को खत्म कैसे करूं, नहीं तो ये विचार से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। राजा ने सोचा, अगर ये माफी मांग रहा है तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी तो ये कुविचार आया। राजा ने भी माफी मांगी और फिर दोनों सोच में बैठे कि अब क्या किया जाए। आखिर राजा के मन में एक विचार आया कि मेरे महल में तो सब कुछ है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा करते महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में ये चंदन के लकड़े यूज किया जाए, खुशबू भी फैलती रहेगी, जो भी आएगा उसको मन की शांति मिलेगी, भजन चलते रहेंगे तो वातावरण के अंदर भी एक जैसे वातावरण चार्ज रहेगा तो व्यापारी को भी ये आइडिया पसंद आया, कहा ठीक है। मंदिर निर्माण का सारा कार्य शुरू किया गया, उसने सारा चंदन के लकड़े भेज दिए और फिर राजा ने राज्य कोष से पैसे निकालकर उसको देना चाहा। तब व्यापारी कहता है मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, इस पैसे के लोभ में ही तो मेरे मन के अंदर ये बुरा विचार आया था, क्यों नहीं ये पैसे राज्य के गरीबों के लिए यूज किया जाए। तो दोनों के मन के अंदर जब पॉजिटिव विचार आया, एक के मन के अंदर मंदिर बनाए, दूसरे के मन के अंदर कि ये पैसे राज्य में गरीबों के लिए यूज किया जाए, तब जाके दोनों का मन शांत हुआ। तो आज अगर मन के अंदर परेशानी आती है, टेंशन आता है, रात को नींद हराम होती है, तो उसका कारण क्या? उसका कारण कोई न कोई बुरा विचार ही होगा, कोई न कोई नेगेटिव विचार होगा। और उसका समाधान है कि मन के अंदर अच्छे विचारों का निर्माण करो, क्योंकि कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी अगर नेगेटिव है तो आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, हाँ क्या कहेंगे? नेगेटिव विचार अगर चल रहे हो तो मन के अंदर सुख शांति आनंद चार्ज होगा? कभी नहीं होगा। व्यर्थ विचार चल रहे हो और मन के अंदर सुख का अनुभव होता रहे, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। अगर मुझे सुख शांति आनंद प्रेम से अपनी बैटरी को चार्ज करनी हो तो उसके लिए तो वैसी क्वालिटी के विचार निर्मित करने पड़ेंगे। बस इतना सा परिवर्तन ले आना है विचारों के अंदर, के जितना सकारात्मक विचार करेंगे उतना हमारे जीवन के अंदर हम आत्मा की बैटरी को चार्ज करके अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकेंगे। तो ये नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए ये पहला साधन है कि जिससे आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है बुद्धि और संस्कार, जिसको आने वाले सत्र में हम देखेंगे। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे, आत्मा की जो वास्तविकता हमने सुनी कि आत्मा की वास्तविकता है सात गुण, ये सातों गुणों का चिंतन करते हुए स्वरूप बनेंगे। क्योंकि जैसा व्यक्ति का चिंतन वैसा ही वो जीवन के अंदर अनुभव करता है। विचारों का प्रभाव ही बहुत अधिक है। तो इसलिए अब हम चिंतन में बैठेंगे, जिसको कहा राजयोग का प्रथम कदम आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन से ही होगा आत्म अनुभव। तो इसलिए अब हम सभी बैठेंगे और जो ये सात गुण हमारी वास्तविकता है उसका चिंतन करेंगे। स्वस्थ होकर के बैठेंगे सभी, और जैसे मैं विचार देती जाऊं, खाली आप सोचेंगे नहीं लेकिन अपने मन को उस भाव में ले चलेंगे। जितना उस भाव में मन चलता जाएगा उतना ही मन के अंदर वो शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। आज व्यक्ति को भय का अनुभव क्यों होता है? भय का अनुभव इसीलिए होता है कि उसके वैसी क्वालिटी के विचार है, पता नहीं ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, तो भय आने लगता है। इसी तरह शांति का अगर अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना है, तो मन को उस भाव में ले चलना है। और जितना उस भाव में चलेगा उतना ही आप अपने स्वरूप के अंदर वो गुण को महसूस करेंगे। तो इसीलिए हम सभी आत्मचिंतन करने बैठेंगे और स्वस्थ होकर के बैठे, पीठ सीधी हो एकदम, और थोड़ी क्षणों के लिए हम अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज है। मैं आत्मा भी ज्योति पुंज हूं। यह शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। सृष्टि रंगमंच पर अपना पात्र निभाने वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग न्यारी हूं। धीरे धीरे अपने मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर अपनी वास्तविकता की ओर। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र स्वरूप मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्वयं को देखती हूं। प्रकाश पुंज के रूप में मेरे चारों ओर पवित्रता का एक दिव्य प्रभा मंडल फैला हुआ है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। इस शांति में प्रसन्नता है, आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप, इसी शांति में शक्ति समाई है। मैं शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, सतोगुणी स्वरूप। कुछ क्षण के लिए मैं इस स्वरूप में स्वयं को स्थित करती हूँ।
प्रेम रूप मेरा न्यारा पिता, प्रेम रूप
शुद्ध आत्मा। शांत हो, शुद्ध शक्ति स्वरूप, धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में रुकुटी के मध्य में स्थित हो, सारा दिन कर्मेंद्रिय द्वारा इन्हीं सतो गुण को प्रवाहित करना है। ओम।